हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर सिंह राठौर ने ज़ोया के आसपास स्पाई कैम इस तरह से फिट करवाई थे कि वो ज़ोया के हर पल पर नज़र रख पा रहा था। ज़ोया कैसे, कब और क्या कर रही थी, ये सब उसकी जानकारी में था। ज़ोया ने कब अरमान ठाकुर को चांटा मारा था, कब मेहर ठाकुर को चांटा मारा था और राजवीर सिंघानिया को नीचा दिखाया था, ये सब भी अबीर को पता था। इसीलिए उसे हर पल की खबर थी। जैसे ही अरमान ने अबीर सिंह राठौर के बारे में उल्टा सीधा कहा था और ज़ोया ने जिस तरह से उसकी जान लेने की कोशिश की थी, वही सब बड़ी स्क्रीन पर देख अबीर सिंह राठौर मुस्कुराने लगा था। और फिर जब उसे लगा कि उसकी पत्नी आज उसकी जान ही ले लेगी, तो उसने वीडियो कॉल के जरिए अपनी बेटी को उसे दिखा दिया। जैसे ही ज़ोया ने अपनी बेटी को देखा, उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वो अरमान ठाकुर को वहीं पटक कर वहां से निकल गई। अब ज़ोया गाड़ी में बैठकर कितनी देर तक अपनी बेटी को देखती रही होगी, क्योंकि अबीर सिंह राठौर ज़ोया को किसी भी वक्त गुस्से में नहीं देख सकता था, ना ही परेशान देख सकता था। वो जानता था कि ज़ोया एक झटके में अरमान ठाकुर की जान ले सकती थी, लेकिन अबीर सिंह राठौर ये नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अरमान ठाकुर को इतनी आसानी से मौत मिले। अगर अरमान ठाकुर की मौत इतनी आसानी से हो जाती तो ज़ोया के बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़ोया ने कितनी देर अकरम और अबीर सिंह राठौर से बातें की होंगी। अबीर को देखकर ज़ोया की आंखें भर आई थीं, क्योंकि उसके बिना उसका एक पल भी मन नहीं लग रहा था। तब ज़ोया से रहा नहीं गया और उसने कहा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रात को आप मेरे पास आ जाएं? ये सुनते ही अबीर मुस्कुराने लगा। अबीर को मुस्कुराते हुए देखकर ज़ोया को अपनी बात का मतलब समझ आया और वो बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी। अबीर राठौर ज़ोया के संदर्भ पर मुस्कुरा उठा और बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यादों में हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी धड़कन में हूँ, हर जगह मैं ही तो हूँ, अबीर ने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा। कबीर की बात सुनकर ज़ोया को गुस्सा आ गया और बोली, ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आप तो हर जगह हैं। अभी भी आप गाड़ी में मेरे पास बैठे हुए हैं ना? अभी इस वक्त तो मैं आपसे यहीं से बात कर लूँगी। ओके, मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय। ऐसा कहकर ज़ोया ने थोड़ा सा गुस्से में मुँह फुलाकर फ़ोन काट दिया, क्योंकि वो वाकई अबीर सिंह राठौर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। खैर, अभी तो उसे अपने मकसद पर भी ध्यान देना था। कुछ सोचकर उसने सिक्योरिटी से कहा, होटल चलो। ज़ोया जिस होटल में ठहरी हुई थी वो शहर का सबसे बड़ा होटल था। इतना ही नहीं, ज़ोया ने उस पूरे होटल को ही अपने लिए बुक कर लिया था। वहाँ पर पूरे होटल में ज़ोया के अलावा कोई मेहमान नहीं था। जिस होटल में ज़ोया ठहरी थी वो होटल किसी और का नहीं बल्कि राजा और चांदनी का ही था। ये बात ज़ोया नहीं जानती थी। उसने तो बस अपने किसी असिस्टेंट के जरिए पूरे होटल की बुकिंग पूरे 15 दिनों के लिए करवा ली थी। ज़ोया को यकीन था कि अगले 15 दिनों में वो अच्छी तरह से अपना बदला ले लेगी और लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताएगी। लेकिन ज़ोया ये नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव अभी बाकी थे, अभी कुछ था जो घटने वाला था। वैसे अभी तो ज़ोया होटल में चली गई थी। जैसे ही ज़ोया ने बड़े ही स्टाइल से होटल के अंदर एंट्री की, उसका वेलकम करने के लिए खुद चांदनी वहाँ मौजूद थी। चांदनी को जैसे ही ज़ोया ने देखा, उसने अपना चश्मा उतार लिया। चश्मा उतरते ही जैसे ही उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी और चांदनी की नज़र ज़ोया पर पड़ी, तो वो दोनों कितनी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखती रहीं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थीं। उस रात फैक्ट्री में चांदनी के साथ जो कहर हुआ था, चांदनी के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, ज़ोया को इस बात के बारे में अच्छी तरह से पता था। तब सब कुछ याद करके ज़ोया की आंखों के किनारे भीग गए। उसने चांदनी को गले से लगा लिया। जैसे ही उसने राजा को उसके पास देखा, वो उन दोनों को देखने लगी। और राजा ने जैसे ही ज़ोया को देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास आया और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि राजा ने राजवीर के कहने पर उसे धोखा दिया था, या यूं कहें कि अक्रम को धोखा दिया था। लेकिन जैसे ही अक्रम ने ज़ोया की जान बचाई थी, राजा को वाकई अक्रम पर गर्व हुआ था। तब ज़ोया के बॉडीगार्ड ने उसे उठा दिया, क्योंकि ज़ोया को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। तब ज़ोया ने राजा से कहा, मुझे पता है तुम अक्रम भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे और जो भी कुछ तुमने किया वो तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये तुमसे करवाया गया था। बट डोंट वरी, अक्रम भाई तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। जैसे ही राजा ने ये सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, वरना उसे ये बात सता रही थी कि उसका बचपन का दोस्त अक्रम उससे नाराज हो गया है। लेकिन ज़ोया की बात सुनकर अब उसे कहीं ना कहीं राहत महसूस होने लगी और उसे लगने लगा कि अक्रम अब बिल्कुल ठीक है, अक्रम ने उसे माफ़ कर दिया है। उसके दिल का एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर सा गया था। दोनों मियां बीवी ने जोया का बहुत ही अच्छी तरह से ग्रैंड वेलकम किया और उसे होटल के सबसे बेस्ट कमरे में रखवाया। बाकी के कमरे उसके गार्ड्स वगैरह के लिए थे, जो जोया के दरवाजे के सामने 24 घंटे ड्यूटी पर थे। जोया को किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं थी। जब तक जोया नहीं चाहेगी, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। पूरा होटल जोया के गार्ड से भरा हुआ था। सही मायने में कहा जाए तो पूरे होटल को सील कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जोया ही बाहर निकल सकती थी। जोया के लिए ही सब कुछ अलाउड था। वहीं दूसरी ओर मेहर ठाकुर ने अरहम ठाकुर को जोया के वहां आने की पूरी सच्चाई बता दी थी और बता दिया था कि उसके भाई अरमान ठाकुर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि अरमान ठाकुर ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में लॉक हो गया था। मेहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अरमान ठाकुर का दरवाजा पीटते पीटते थक गई थी, लेकिन अरमान ठाकुर ने दरवाजा नहीं खोला था। इसीलिए थक हार कर मेहर ने अरहम ठाकुर को फोन करने का फैसला कर लिया था। वहीं अरहम ठाकुर, जो कि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर गजाला जी के साथ उसके घर पर रह रहा था, जैसे ही उसने ये सारी बातें सुनी उसका बुरा हाल हो गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जोया इंडिया पहुंच भी चुकी होगी और उसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया होगा और उसने अरमान भाई पर हाथ उठाया था। अरहम के लिए ये सारी खबर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, इसीलिए उसने अगली ही फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। साथ ही साथ उसने गजाला जी को भी अपने साथ लेकर आने का फैसला कर लिया था, क्योंकि गजाला जी ने अरहम की सेवा करके उसे एहसास करवा दिया था कि वो उसकी सगी माँ है और वो उसी के साथ रहेगी। अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। वैसे भी अरहम उन्हें मना नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अबीर सिंह राठौड़ गजाला जी को कुछ भी नहीं समझता। अगर उसकी माँ गजाला जी अबीर सिंह राठौड़ के साथ रही तो अबीर सिंह राठौड़ न जाने कब उसकी जान ले ले, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अरहम ठाकुर ने अपनी माँ गजाला जी के साथ इंडिया जाने का फैसला कर लिया था और ठीक अगली फ्लाइट पकड़कर अपनी माँ के साथ इंडिया के लिए रवाना हो चुका था।